वर्ल्ड एड्स डे से ठीक पहले यूएन एड्स ने एक रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट की क्या प्रमुख बातें हैं?
वर्ल्ड एड्स डे के पहले जो रिपोर्ट यूएन एड्स ने जारी की है, इस बार जो उसका फोकस रहा है वो है पावर टू द पीपल, और वो जाता है इस साल की थीम के साथ जो है कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कैसे कम्युनिटीज़ ने एचआईवी एपिडेमिक को बहुत बदलाव पूरे विश्व में उनकी वजह से आया है, और ख़ास करके इंडिया में कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमने बहुत सारी जगहों पर देखा कि हमको इंडिया में ख़ास करके जैसे देखा कि हमने कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट की वजह से बहुत जगहों पे जीत हासिल की है, और वही अभी हम काम और आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो हमें लास्ट माइल करनी है वो कम्युनिटीज़ के साथ ही हम अचीव कर सकते हैं।
तो इस रिपोर्ट में इंडिया के बारे में, भारत में जो ये संक्रमण है उसके बारे में क्या खास बातें हैं?
इंडिया के बारे में इस रिपोर्ट में ये है कि इंडिया में हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में बहुत हमने एडवांसमेंट करी है एचआईवी रिस्पांस में। जैसे कि अगर हम बोलें कि यहाँ पे इंडिया में कितने लोग एचआईवी से जी रहे हैं, तो 21 लाख लोग एचआईवी से जीवित हैं इंडिया में। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट प्रोग्राम दोनों बहुत स्ट्रेंथन करे हैं पिछले कुछ सालों में, और वो दोनों प्रोग्राम सरकार और कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट के साथ ही पहुँचे हैं जहाँ पहुँचे हैं।
तो अगर साउथ एशिया की, पूरे दक्षिण एशिया की बात की जाए, तो कितनी बड़ी महामारी है ये?
अगर हम एशिया पैसिफिक लेके चलें तो एशिया पैसिफिक में 3,10,000 लोग हर साल नए इन्फेक्शन एचआईवी के होते हैं, और 9% डिक्लाइन हुआ है 2010 से। तो डिक्लाइन उतने हद तक नहीं है जितनी स्पीड से होना चाहिए, उसके लिए हमें और बहुत करने की ज़रूरत है। जितने राष्ट्र हैं एशिया पैसिफिक के, एक साथ मिलके एकजुट होके देख रहे हैं कि प्रिवेंशन करने के लिए, ताकि हमारे नए इन्फेक्शंस कंट्रोल हों, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी हम करें। और ये चीज़ बहुत क्लियर है कि अगर हम नए इन्फेक्शंस रोकना चाहते हैं, उसके लिए अगर हम लोगों के साथ और जो कम्युनिटीज़ डायरेक्टली इम्पैक्टेड हैं, अगर उनके साथ हम काम मिलके करेंगे तो हम रिजल्ट्स ज़्यादा जल्दी अचीव करेंगे।
तो जैसे कि आपने कहा कि बचाव के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, तो बचाव के लिए, इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठा सकते हैं?
प्रिवेंशन जिसको हम बोलते हैं, रोकथाम के लिए, क्योंकि अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें तो इंडिया में जो एचआईवी है वो ज़्यादातर की पॉपुलेशंस के साथ है, और की पॉपुलेशन में 4 ग्रुप्स आते हैं: मेन हु हैव सेक्स विद मेन, सेक्स वर्कर्स, पीपल हु यूज़ ड्रग्स एंड ट्रांसजेंडर्स। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड एपिडेमिक है, तो हमें इन 4 पॉपुलेशंस के साथ बहुत मिलकर काम करना है कि इन पॉपुलेशंस में नए इन्फेक्शंस ना हों। वो काम पिछले 10 सालों में और उससे ज़्यादा में बहुत ज़ोर से करा गया है, मगर अब हम इस पॉइंट पे पहुँचे हैं जहाँ पे जो पुरानी स्ट्रैटेजीज़ थी, जहाँ पे हम लोगों को मैसेजेस देते थे, वो वाली स्ट्रैटेजीज़ अब नहीं चलती हैं, इसलिए क्योंकि अब सोशल मीडिया का यूज़ बहुत है। तो अब जब हम शिफ्ट कर रहे हैं स्ट्रैटेजीज़, उसमें ये देख रहे हैं कि हमको लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए जो वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो है सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, उसके थ्रू हम कैसे उनको प्रिवेंशन मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। उसी के साथ जो प्रिवेंशन पैकेज होता है, जिसमें दूसरी चीज़ें भी होती हैं, जिस तरीके से कॉन्डम्स और भी अब नई चीज़ें स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करी जा रही हैं, जैसे कि प्रेप इज़ प्री एक्सपोजर प्रोफ्लैक्सिस। उससे क्या होता है कि जो इंसान जिसका रिस्की बिहेवियर हो, अगर वो प्रेप लें तो वो एचआईवी उनको ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ये बहुत नई स्ट्रैटेजी है, दूसरे देशों में ऑलरेडी इस्तेमाल करी जा रही है, इंडिया उसी रास्ते पे चलने की सोच रहे हैं।
तो जब आप जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं, तो क्या कुछ परेशानियां भी आती हैं? लोग रेजिस्ट करते हैं या उनकी समझ में नहीं आती, जो पुरानी भ्रांतियां हैं उनको लेकर चलते हैं?
काफ़ी कुछ तो बदला है इंडिया में, मगर अभी और बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों की अभी तक, जैसे कि हम कहेंगे कि यंगर जनरेशन में ज़्यादा है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। दूसरी चीज़, स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन अभी भी देखा जाता है, पहले से कम है मगर एकदम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों के पास राइट इन्फॉर्मेशन हो। अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास करेक्ट होगी तो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन तभी ख़त्म हो सकता है। दूसरी चीज़, स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने के लिए सरकार ने 2017 में HIV लॉ बनाया है और वो लॉ अब स्टेट लेवल पर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। उसके अंतर्गत अगर किसी भी इंसान को स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके लिए वो लॉ ये बोलता है कि वो आवाज़ अपनी उठा सकते हैं, लीगली उठा सकते हैं। उसमें और भी बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस हैं जिससे जो लोग HIV से इन्फेक्टेड हैं या इम्पैक्टेड हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है।
तो जो बच्चे होते हैं, जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है, उसके बारे में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है हाल ही में, उस रिपोर्ट की क्या प्रमुख बातें हैं?
जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है, उसके लिए एक ग्लोबल टारगेट है जिसमें हम ये देखते हैं कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हम बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं अगर माँ को सही टाइम पे, जो अगर HIV पॉजिटिव है, सही टाइम पे दवाई दी जाए। उसके लिए माँ का HIV टेस्ट होना ज़रूरी है। जो टारगेट है ये कि 2020 तक हम एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन कर दें। उसके लिए बहुत यूनिसेफ, सरकार, UNAIDS और भी बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं जो मिलके काम कर रही हैं और हम बिल्कुल लास्ट माइल पे हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि लास्ट माइल सबसे डिफ़िकल्ट होती है, तो उसको लेकर सब तरफ से हम अपना फोर्स लगा रहे हैं कि 2020 तक नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम देखें कि हम मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एलिमिनेट कर दें। कुछ स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स दूसरों से आगे हैं, कुछ जो बहुत बड़ी स्टेट्स और बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे मदर्स नहीं पहुँच पाती हैं ANC के लिए, वहाँ पे दूसरे हेल्थ प्रोग्राम्स के साथ काम हो रहा है टू इंश्योर कि मदर्स जो प्रेग्नेंट होती हैं उनका HIV टेस्ट हो, और अगर कोई माँ HIV पॉजिटिव निकले तो उनको डेफिनेटली मेडिकेशन दिया जाए ताकि बच्चा पॉजिटिव ना हो।
तो किस तरह के प्रोग्राम्स हैं UNAIDS के जो एड्स की रोकथाम और उसके खात्मे की दिशा में काम कर रहे हैं?
UNAIDS क्योंकि एक प्रोग्राम है और 11 UN एजेंसीज के साथ बना हुआ है, तो हम अपनी UN एजेंसीज के साथ काम करते हैं अलग अलग एरियाज़ में HIV के। जैसे आपने अभी यूनिसेफ का बोला, तो हम यूनिसेफ के साथ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन पे काम करते हैं, WHO के साथ ट्रीटमेंट पे काम करते हैं, उसी तरीके से दूसरी UN एजेंसीज के साथ। UNAIDS का जो मुख्य फोकस है वो एडवोकेसी का है, जहाँ पे हम काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ और सीनियर लीडरशिप के साथ पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने के लिए, पॉलिसी चेंज करने के लिए जो प्रोग्राम के लिए बेनिफिशियल हो। दूसरा जो UNAIDS का बहुत मुख्य फोकस है वो है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का। जैसे मैंने आपको बोला कि इस साल की थीम भी कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस है, तो UNAIDS ने बहुत साल तक कम्युनिटीज़ को एक साथ जोड़ा है, कम्युनिटीज़ को सरकार के साथ जोड़ा है और कम्युनिटीज़ को एक आवाज़ दी है कि वो अपनी बात रख पाएँ और पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस कर पाएँ।